को जब परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी। मैं चल पड़ी, अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तब आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी मुझे हर दिन से ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा में जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा में जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। तो हम सब रूहानी क्रांति के सूत्र के अंतर्गत नौवा दिन आरंभ होने जा रहा है, तो हम सब रूहानी रायों के लिए आगे बढ़ने के लिए रूहानी क्रांति के द्वारा विश्व में शांति की दुनिया स्थापित करने के लिए हम सब आत्माएं सूत्रधार बन करके सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से सबको पता चल जाएगा और सबको पता चलना भी चाहिए, क्योंकि रूहानी सूत्र के अंतर्गत आज जो अव्यक्त मुरली है वो 26/1/77 का है। तो इसमें बाबा ने बोला कि हेडिंग में है कि अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। तो बाबा ने इस मुरली में जैसे कि नई सेवा की शुरुआत, नए सेवा के अध्याय शुरू करने के लिए बाबा पूर्ण रूपेण फोकस करते हैं, उस पार्टी में आई हुई आत्माएं साथ में दादी जी। तो बाबा ने इसमें बोला कि अभी तक जो भी कर रहे थे सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा जो सेवा होनी चाहिए थी वो बहुत कम करते हो। इसमें बाबा ने उल्लंघन दिया है, तो फिर आगे कैसे इसको करना है, किस विधि से करना है, इसके क्या फॉर्मूले हो सकते हैं और दुनिया में इसको कौन कौन आत्माओं ने प्रयोग करके संसार में कई सारी सिद्धियां दिखाई है। क्योंकि कोई भी बातें होता है तो बाबा करवाना होता है तो डायरेक्ट ऐसा करो नहीं कहते, बातों को घुमा फिरा करके कहीं से मिली हुई बातों को लेकर के उदाहरण के तौर पर सुनाते, उन्होंने ऐसा किया है तो तुम भी कर सकते हो। उन्होंने इस प्रकार की जो सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग करके एकाग्रता की शक्ति के आधार से संसार में क्या नहीं पाया है, तो दुनिया की आत्माएं उन्हें जो भी अपने को जैसे भी छोटे छोटे धर्म मठ पंथों की स्थापना की है वो अपने एकाग्रता के बल से अंतर्मुक्ता के गुफा में रहकर उसको प्रयोग करके संसार की आत्माओं को कुछ न कुछ दिया है। इसीलिए उन आत्माओं के जो मठपंथ और जो प्रथा चली आई है तो उसका फाउंडेशन ये रहा है सिद्धियाँ। तो हम सबको भी सिद्धि स्वरूप आत्मा का बाबा टाइटल देते हैं, तो सिद्धि स्वरूप हमें किस बात में बनना है, सिद्धियों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अपने मिशन को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए और हमारी स्थिति को ऊँची स्तर पर ले जाने के लिए, और आत्मा की जो परसेंटेज हर दिन बढ़ उन्नति प्रगति को पा रहा होता है तो उसमें नया जान फूक करके और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बाबा नए तरीके से सेवा का जो शुरुआत करते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि दुनिया की आत्माओं ने जिस प्रकार की सिद्धियों के माध्यम से इस प्रकार की जो सेवाएं की है, उन्होंने जैसे कि आत्माओं को आह्वान करना, दुखी रोगी आत्माओं को सुख शांति देना, स्वयं का उपचार भी वो कर सकते हैं, और उन्होंने तो कई सारी ऐसी सिद्धियां का प्रयोग किया है, चलते हुए चीजों को रोक दिया है, चलते हुए ट्रेन को रोकना और भी बहुत सारी चीज किए। तो बाबा ने उसी चीज को रेफर करके हम सबको बता रहे हैं कि अभी आपको इस प्रकार की सेवाओं का शुरुआत करना है। तो बाबा ने बोला कि शिवरात्रि में इस प्रकार की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस प्रकार से एकाग्रता का प्रयोग करना है। एकाग्रता की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है, चाहे साइंस के जगत में, चाहे भौतिक जगत में, चाहे आध्यात्मिक जगत में, चाहे धार्मिक जगत में, चाहे साधु संत महात्माएं जो ऋषि मुनियों ने जो चीज पाई है उसके आधार से एकाग्रता का प्रयोग किया गया है जहीं भी। तो हम सब चाहे दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, तो चारों चीजों का होना जरूरी है। मन बुद्धि दिल दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जहाँ सिद्धियाँ लेट मिलती है हमको, ज़्यादा समय लगता है, तो उसमें यही चीज बीच में विघ्न रूप बन जाता है। तो विघ्नों का आधार भी यही है कि आज हम सब हर दिन विघ्नों से संघर्ष करते हैं, क्योंकि धधकती हुई स्मृति स्वरूप में हम नहीं पहुँच पाते हैं, तो वो फिर विघ्न बन करके हमारे जीवन में संघर्षरत रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बाबा कहते हैं कि साकार में बाबा ने भी इसको प्रयोग किया है। बाबा ने लोग साकार में इस प्रकार से प्रयोग किया कि आत्माओं को आह्वान किए, शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति भरे, और जो उमंगोत्साह रहित आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाए। और इसमें बाबा कहते हैं कि उनके समय और जो संकल्प मिलते थे, जब बाबा वाइब्रेशन देते थे, सकाह देते थे, तो आत्माओं को पता चल जाता था। और वो आत्मा बाबा ने बोला कि इस प्रकार के सकाश जब देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं एकाग्र होकर के, और एकाग्र होने से आत्मा में अनंत ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। सबकॉन्शियस और अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जब घर्षण होता है तो वहाँ एनर्जी का जन्म होता है, और लंबा समय जब हम करते हैं तो सिद्धि स्वरूप जैसे हमारे पास तो बहुत सारी बाबा ने खेला ही हमारे इसके ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए हम सब यहाँ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो बाबा ने भी बोला कि किसी आत्माओं को कोई सकाश दे रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा। तो बाबा ने बोला कि अचानक उसको खुशी होगी, अंदर से अचानक खुशी होगी और उसको सम्मुखता का अनुभव होने लगेगा और वो आत्मा खुशी में आ जाएगी। और बाद में जब मिलते हैं तो वो समय भी मिलता है और बातें भी मिल जाती है, और वो कहने में सहज हो जाता है बाबा ने मुझे इस प्रकार की अनुभूति कराई है, इस प्रकार के अनुभव कराए। तो उसमें बाबा ने बोला कि देता तो मैं सबको है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति अगर सुना अनसुना, जैसे कि कोई लौकिक दुनिया के जैसे कि टेलीफोन डिपार्टमेंट के ऊपर बाबा ने फोकस किया है, जैसे कि टेलीफोन की जो घंटी बजती है अगर उठाते हैं, रिंग बजता है तो बातें हो पाती है, अगर घंटी बज रहा है अगर वो नहीं उठाता है तो उसका उसको फायदा नहीं मिलेगा, वो कैच कर नहीं पाती वो आत्मा, और वो बाबा देते हैं लेकिन वो ले नहीं पाती है। उसमें बाबा ने बोला कि तार अगर हिल रहा होगा तो तार ही हिल रहा होगा और पिलर हिल रही होगी, टावर हिल रहा होगा, तो फिर वहाँ की बातें बाबा ने बोला कि वातावरण वायुमंडल की बातें हैं या वृत्ति की बातें हैं। वृत्ति अगर चंचल होगी तो वो आत्मा इस बातों को कैच नहीं कर पाएगी और उसका उसको अनुभव नहीं होगा। इसलिए इसको जब इस्तेमाल करते हैं एकाग्रता की शक्ति का, तो उसमें दो बातें बाबा ने बताई। ये तो एक बाबा ने बोला कि संकल्प भी एकाग्र होने चाहिए तो स्थिति भी एकाग्र होनी चाहिए। अगर दोनों एकाग्र है और अंतर्मुखी बन करके एकाग्रता का अनुभव करते हैं तो इसमें एक बाबा ने जो अच्छा जो बातें बताए कि प्राप्ति होगी। यहाँ पर प्राप्ति जब होती है और प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं तो व्यर्थ फालतू बातों से हम किनारे हो जाते हैं और लक्ष्य स्ट्रांग हो जाता है तो प्राप्ति होने लगता है। और बाबा इसमें कहते हैं कि आपको इसके अंदर में जाने से जो भी प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति बाबा ने बोला कि यहाँ भी आत्माओं को आह्वान करना, पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने का बैठे बैठे काम कर सकते हैं हम। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तो स्थिति के आधार से ही ये काम किया जा सकता है। हल्के स्थिति और हल्के अवस्था के द्वारा ये काम करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि इसमें दो कंट्रास्ट बाबा ने बताए। एक तो बाबा ने बोला कि एकाग्रता के गहराई में जाने से अनुभव के हीरे मोती मिलते हैं। बाबा ने बोला ज्ञान की गहराई में जाओगे तो ज्ञान के लहरों में लहराओगे, लेकिन एकाग्रता के गहराई में जाओगे तो आपको ज्ञान के हीरे मोती मिलेंगे, हाँ अनुभव के हीरे मोती मिलेंगे। तो इसके द्वारा आपको फिर समय भी मिलेगा और सारे फालतू बातों से आप किनारा सोते हो जाएंगे और इसमें फिर एक संस्कार बन जाएगा कि ये सेवा हमें करनी है और इस सेवा एक नेचर बन जाएगा हमारा। तो बाबा आगे कहते हैं कि हम इस बातों को करते हैं तो उन सभी आत्माओं को फायदा होगा जो हमारे व्यवहारिक जीवन को देख करके प्रभावित हुए हैं और यहाँ आने के उम्मीदवार हैं। उन सब आत्माओं को अनुभव होगा और अभी तक तो आप सबने मेहनत महानता का अनुभव कराए हैं, लेकिन अब रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तो रूहानियत का अनुभव कराएंगे तो वो सभी आत्माएं शक्तिशाली बनेगी और सभी आत्माओं के लाइफ में भी परिवर्तन आएगा और हम उसमें एग्जाम्पल बनेंगे और ये सेवा एक कंपलसरी सेवा बन जाए, इसके लिए बाबा कह रहे हैं। इसलिए रूहानी क्रांति के सूत्र का जो 9वां दिन, हम सब इस सूत्र को प्रयोग करके सूत्रधार बन रहे, सूत्र को धारण करने वाली आत्माएं। तो हर दिन नूतन बातों से हमारी शुरुआत हो रही है, क्योंकि दुनिया में जिस प्रकार से क्रांतियां होते हैं वहाँ पर दिखावा ज़्यादा होती है और बहुत सारी आत्माओं को तिलांजलि देनी पड़ती है, प्राण निकलती है आत्माओं की, क्योंकि अगेंस्ट में काम होता है वहाँ पर। जैसे कि उसकी सत्ता को ख़त्म करने के लिए जब हम मैदान में आते हैं तो वहाँ जो भी रास्ते में आते हैं उस सबको उखाड़ के फेंकने के लिए लोग लग जाते हैं। तो एक छोटी सी बातों के लिए इतनी सारी बातें करते हैं और अपने प्राण को आहुति देते हैं, राम स्वयं मर करके दूसरों को सुख मिल जाए, कितनी ऊंची भावना है। हाँ, लेकिन वो तो है, देश को आज़ाद करने की मामला अलग है, लेकिन एक सिंपल बातों के लिए एक सिंपल बातों के लिए प्राण देना। तो इसलिए हम सब समझते हैं कि दुनिया में जो क्रांति चलते हैं होता है क्रांतियाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी का समय अनुसार, अभी की आवश्यकता जो बाबा ने उस समय बताए थे, अभी हम सबको यही काम आ रहा है और हम घर बैठे बैठे इस कार्य को अंजाम देते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके लिए बाबा ने तब से बताई हुई बातें आज व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल में काम आ रहा है और मन को एकाग्र करने की सामर्थ्य, मन को एकाग्र करने की क्षमताओं का जब हम विकास करते हैं और मन एकाग्र हो जाता है तो उसका प्रैक्टिकल फायदा आज हम सब ले रहे हैं। और जिन्होंने इस प्रकार के प्रयोग में कम पेशी छोड़े हैं तो सब बातें आज हम एकाग्र होकर के बैठ नहीं पाते हैं और स्वयं को अकेलापन इतना तंग करके रखा हुआ है आज, इसलिए हाथ में मोबाइल टीवी रेडियो का सहारा लेकर जो अकेलापन से मुक्त होना चाह रहे बाबा के मार्ग में, जब तक हम एकाग्र एकांत नहीं होते हैं, एकांतवासी नहीं बनते हैं, अकेलापन का अनुभव नहीं होगा तब तक कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा एकांत माने अकेलापन, उतनी ज़्यादा हम स्वयं से मित्रता करते हैं, स्वयं के समीप होते हैं, स्वयं के नजदीक होते हैं। जहाँ पर अकेलापन नहीं होगा तब तक हम स्वयं से बात नहीं कर सकते। स्वयं की बातें स्वयं के अंदर तक पहुँचाने के लिए हम सब एकांतवासी का जो फॉर्मूला है उसको प्रयोग करते हैं। तो एकाग्रता इतनी ज़बरदस्त फॉर्मूला है कि हम सब संस्कार को, स्वयं के संस्कार को परिवर्तन करना, हम इसका फुल इस्तेमाल करते हैं इसको। और जब तक हम एकाग्र नहीं होते, एकाग्रता की गहराई में नहीं उतरते, तब तक किसी भी प्रकार की सिद्धियां हमें नहीं मिल सकता है। तो सिद्धियों का आधार, सिद्धियों की जो प्राप्ति होगी एकाग्रता के द्वारा होगा। तो हमारे संस्कार परिवर्तन में जो ढीला ढाला ढीलापन आ रहा है, ढीला हो रहा है हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए, उसमें भी यही एकाग्रता की कमी है। और एकाग्रता के कई सारे रास्ते हैं। तो एक जो रूहानी क्रांति के सूत्र के आधार से हमें यहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि इस रास्ते से जाने से ये चीज़ मिलेगी। इस रास्ते से अगर जाएंगे तो ये चीज़ हमको मिलेगी, पूरा क्लियर होने चाहिए। अगर हम चले एक तरफ और पहुँचे दूसरी जगह पर तो हम भटक जाएंगे। और इसीलिए भगवान भरोसा हमारी स्थिति बन रही आज पूरा का पूरा लगी तो लगी, अच्छा अनुभव हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लंबा सफ़र जीना है, आज का दिन भी चला जाए कोई फर्क नहीं, दूसरा दिन तो आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें हम सबको पता तो होने चाहिए ना। हाँ तो इसका मतलब पता तो होने चाहिए कि इस रास्ते से जाने से, इस गली से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ये पता होने चाहिए। तो इसका मतलब जिस रास्ते का पता नहीं है उस रास्ते में अगर हम चले जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा व्यक्ति। हाँ हाँ, नया अनुभव तो है, होना तो चाहिए। हम भी इस बात को मोल लेते हैं और मोलना भी चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंच करके जब हम आते हैं तो उसमें रूहानी सुख बहुत मिलती है और बताने में हमारे पास खूब अथॉरिटी रहती है कि इस चीज़ को हमने ढूंढ करके, इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को पाया है। अगर उस रास्ते के लिए अगर यहाँ कोई जाना तैयार हो जाए ना, ये सभी भाई लोग हाथ खड़े कर देंगे उस रास्ते से भूल से नहीं जाना, क्योंकि अनुभव कर लिया है ना। तो दूसरों को इस प्रकार के तकलीफ ना हो बोल के हम पहले बता लेंगे। तो इसीलिए हम पूरा नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए हम सबको इतने प्रकार की जो हम आज बिना शस्त्र अस्त्र की जो लड़ाई करते हैं दुनिया, यहाँ पर हमारे पास में एक्चुअल में देखने में तो कोई शस्त्र अस्त्र दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे जितना शस्त्र अस्त्र दुनिया में किसी के पास नहीं है। हजारों सामान है हमारे पास में, हजारों प्रकार के वरदान हैं, तो हजारों प्रकार की ज्ञान की गहराई है हमारे पास में। इसीलिए एक एक दिन इतने स्वादिष्ट होकर के निकल जाए, खुशहाली जीवन में हर दिन दिखाई पड़े, और हर दिन कुछ न कुछ नया होना चाहिए, और जैसे कि नया रिक्स मोलना भी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से अगर मैं जाऊँगा तो क्या मिल सकता है। वो तो आए हैं स्थूल रूप में, तो जो भटकना होती है वो थोड़ा दर्दनाक होता है। तो सूक्ष्म रूप से हम इसके अभ्यासी बने, तो इसीलिए रूहानी क्रांति अर्थात लाइफ में परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, समूचा परिवर्तन, और सब देखे और सब जाने और सबको अनुभव हो, क्योंकि इस प्रकार की जो सूक्ष्म सेवाएं हम सब करते हैं, तो दादियों ने तो ये प्रैक्टिकल में किए हैं, बाबा ने तो पहले एग्जाम्पल बनकर के दिखाए हैं, तो अब हम सब इस बातों को कितना महत्व देते हैं, क्योंकि उस आत्माओं को जब इमर्ज करते हैं हम सब, तो उस आत्मा को भी अपने बराबर फ्रीक्वेंसी में लाना होता है, समान स्टेज में ला करके, और उसकी धरनी तैयार करे बिना हम अगर सकाह देते तो उसको लगता नहीं है, वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो उस आत्मा से बातें करना, उस आत्माओं को खुशी दिलाना, उमंग उत्साह दिलाना, और फिर उसके बाद में हम वाइब्रेशन देते हैं तो आत्माओं को हाथों हाथों लग जाता है। कई बार हम सब ने देखा है संदली में, संदली पर कोई पावरफुल आत्मा बैठी है, अगर वो कोई कोना में सोते हुए आत्माओं को भी वाइब्रेशन देती है तो अचानक उठ जाता है, जागृत स्थिति में आ जाता है, वो जैसे कि देखने लगता है क्या हुआ। तो हमने भी जब उस समय प्रयोग में लाए थे सेंटर पर, तो सोती हुई आत्माएं भी सजग हो जाती थी और देखने दृष्टि लेने लग जाती थी। तो इसका मतलब वो आत्माओं से बातें करने की, हाँ वो देखता है फिर भी इधर उधर देख करके सोचेगा तो सही दूसरे तीसरे ने तो नहीं देखा, क्योंकि संदली संदली में बैठने वालों को तो पता रहता ही है। हाँ हाँ वो तो बहुत सारी मामला है यहाँ पर, हाँ तो इसीलिए ये सब फिर हम लोग स्टेज पर होते हैं तो इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि दृष्टि देने हम बैठे हैं और दूसरे तीसरे हमको दृष्टि दे रहे हो, ये तो फिर अच्छी बातें नहीं। हमें बाबा ने निमित्त बनाए हैं तो इसमें चौकस रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सैकड़ों ब्राह्मणों के संकल्प जब चलेंगे तो हम दुआएं इकट्ठा करने के लिए, पुण्य एकत्रित करने के लिए बैठे हैं और वहाँ बदुआएँ मिल जाए और सभी आत्माओं के मन से दिल से तो कुछ न कुछ तो निकलता ही है। संकल्प सुबह सुबह का अगर खराब कर दिया हमने अपनी स्थिति अवस्था के द्वारा तो फिर वो आत्मा उड़ नहीं पाती है, तो उसकी सजा हमको सोते ही मिल जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक भी संकल्प ब्राह्मणों का वेस्ट किया तो उसका फल हमें मिलेगा। इसीलिए दुनिया में भी जो एकाग्रता के बल से जो सिद्धियाँ पाई है, पहले भी सुनाया था कि जो शंकराचार्य बाबा ने बोला कि अर्ध प्योर आत्मा है, हाफ प्योर सोल, उन आत्माओं ने संसार में इतनी तहलका मचाए हैं कि संसार में बताते हैं कि जो शंकराचार्य के लिए वो एक ही टाइम पर तीन जगह लेक्चर करते थे, भाषण देते थे, प्रवचन देते थे। अब उस समय तो गाड़ी टेलीफोन मोबाइल की जो व्यवस्था होती नहीं थी तो लोगों को बाद में पता चलता था, और वो बातें करने के बाद पता चलता था कि यहाँ भी इसी समय पर उसका लेक्चर था, वहाँ भी इसी समय पर उसका लेक्चर था। हाँ 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 तो इसका मतलब वो आत्माओं में कितनी कितनी ज़्यादा ताकत थी। हाँ तो इसीलिए हम सब इस बातों के लिए, अगर हम जैसे बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो आत्माएं कितनी सारी सेवाएं एक साथ कर सकती है, और माइक्रो सेकेंड्स जैसे कि नैनो सेकेंड में ये काम होता है। तो आगे जाकर के तो बाबा ने बोला कि जो साक्षात्कार कराने का काम होगा, चमत्कार कराने का काम होगा, तो बाबा ने बोला कि शक्तियों की जय जयकार तब होगी। बाबा ने यहाँ पर बोला कि स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाए तब शक्तियों की जय जयकार होगी। हाँ, और बाबा सर्वशक्तिमान बाबा को सर्व माना शक्तियाँ बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए पहले तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी महिमा वाह करते थे कि बहुत मेहनत अच्छी की आप लोगों ने, आपकी जीवन बहुत अच्छी है ना, इस प्रकार के बहुत अच्छा भाषण किए ऐसा बोलते थे, लेकिन आगे जाकर के यह नहीं होगा कि जय जयकार होगी आप सबकी। तो जय जयकार करवाने के लिए एकाग्रता का जो अभ्यास कितनी गहराई में उतर के हमें करना चाहिए, तुरंत इसका फल हमको मिल सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसका प्रयोग करते चलेंगे तो इसकी अनेकानेक, बाबा ने बोला कि सूक्ष्म लीलाओं की अनुभूति होगी, अंतर्मुखता के द्वारा सूक्ष्म लीलाओं की विचित्र अनुभव होगा। और यह अनुभव आगे जा कर के इतना कारगर हो जाएगा, और इस कार्य में हम जो इन्वॉल्व हुए हैं तो आज हम सब ब्राह्मणों के लिए जैसे कि यह रामबाण है, अगर इस प्रकार की सेवाएं अगर हम करते हैं अभी तो हजारों लाखों आत्माएं ये वायुमंडल में वातावरण में भटक रही है, कोई ऑक्सीजन न पाकर के दर दर प्राण निकलने की तैयारी में है। तो इस प्रकार की जो हालातें हुई है, और 6 तारीख की जो संदेश हमने सुने कि बाबा ने संदेश में ये भेजा कि बच्चे प्रकृति को जो तिरस्कार करते हैं, प्रकृति को नफरत करते हैं, और जो प्रकृति के द्वारा जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी नहीं समझते हैं, इसीलिए ये समस्याएं बढ़ती जा रही है, और बच्चे भी नहीं झुकते हैं। तो हमने एक जगह पर कोरोना के ऊपर कमेंट्री बनाए थे, तो 1 घंटे की कमेंट्री चल रही थी तो उसमें जैसे कि रोड के साइड से रोड नदी की था तो स्पीकर चल रही थी, तो कोरोना का जो कमेंट्री था उसको वाइब्रेशन देना, शिकायत देना, उससे माफ़ी मांगना, ये सब बातें चल रही थी कमेंट्री के द्वारा। तो कल की परसों जो 6 तारीख की जो संदेश है सेम मिलता जुलता ही है। इससे जितने ज़्यादा नफरत करेंगे, घृणा करेंगे और माहौल बनाते रहेंगे, उसको सबसे ज़्यादा अटैक करेगा, क्योंकि ये कुदरत का रूल है और इस बात को हमें समझना है। और जो थोड़ा सा वाइब्रेशन देते हैं, सकाश देते हैं, वो भी तो कुछ कारणवश ही आया है ना, ऐसे थोड़ी उत्पत्ति हुआ है, उसके भी तो बहुत बड़ा मिशन है। तो इसीलिए हमें उसको वाइब्रेशन देना जरूरी है और उसको सकाश देने की आवश्यकता है। तो उस भाई ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और स्पीकर कम कर दिए थे कि बाहर में कोई लोग न सुने, क्योंकि वो डर हो गया उनको। लेकिन हम तो इतने नशे में सुना रहे थे, तो इतनी ये आवश्यकता थी, बाबा ने जैसे कि टच कराया, तब तक संदली में जब तक मैं बैठा नहीं था तब तक क्या सुनाऊँ पता ही नहीं था तब फिर शुरू हो गई तो चलती रही। तो इसका मतलब हमें किसी के साथ में भी इस प्रकार के बर्ताव हमसे न हो, इस प्रकार के है ना नफरत घृणा जो चीज़ दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करना है हमें। अगर और फिर दूसरी बातें है कि सतयुग तीर्थ द्वापर कली हम सब ने है ना अच्छे तरीके से खा पी के इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, ब्रह्मा का दिन को भी हमने स्वागत किए और वहाँ के सुख भोगे। द्वापर कली में भी बाबा ने हम सबको इतनी ऊँची पद पोजिशन स्टेटस दिए हैं, अब बाबा के बने हैं, और प्राण छोड़ने के लिए हमें इस प्रकार की कोई डर नहीं होने चाहिए, क्योंकि माइक्रोसेकेंड में आत्मा बाहर हो जाती है। सिर्फ उसको ये दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने उस प्रकार के कर्म किए हुए हैं, उस सजाए के रूप में थोड़ा देर होता है, लेकिन उसके बाद तो आत्मा माइक्रोसेकेंड में बाहर होगी ना, फिर दोबारा उस शरीर में आके घुसना वो कितना चाह करके भी नहीं चाहेगी, पसंद नहीं करेगी। तो दादी के लिए भी जो संदेश हमने सुने थे, दादी के मन में संकल्प चल रहा था, जो ईशु दादी कह रही थी कि कुछ दिन से संकल्प चल रहा था कि शरीर चल नहीं पा रहा है, अगर बाबा उठाता है और बाबा वहाँ अपने दूसरी सेवा में लगाता है तो बहुत अच्छा करके, वो दादी के मन में ये संकल्प चल रही थी है ना। तो फिर बाद में बाबा ने इस संकल्प को स्वीकार किया और दादी वतन में पहुँच गई। तो इसीलिए हमें भी इस प्रकार के जाने से इस प्रकार की दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज हम सब ने जो अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की जो लीलाएं हैं इसके ऊपर जो बाबा ने फोकस किए थे, तो आप सबके साथ में मुरली को थोड़ा सा स्मृति में ला करके शेयर किया। तो इसी में इतने में ओम शांति।